श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। स्वागत आप सबका, वेलकम टू द सेकेंड सेशन। आज दूसरा सेशन है भगवत गीता के ओवरव्यू को। जैसे हमने कल बताया था कि हम लोग भगवत गीता के सभी श्लोकों को नहीं ले रहे हैं या अध्याय को भी पूरी तरह से हर विभाग को समझा नहीं पा रहे हैं। ये केवल एक ओवरव्यू है ताकि जिससे पता चले कि पूरी भगवत गीता में क्या है, पहले अध्याय का विषय क्या है, दूसरे का क्या है, कैसे पहला अध्याय दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे करते करते 18 अध्यायों का पूरा वर्णन हमें पता चले। सो इसलिए यहाँ पर आप सब उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम प्रारंभ करेंगे, और इससे पहले कि आज का विषय हम प्रारंभ करें जो आज हम करने वाले हैं, सो हम चाहेंगे कि कल जो हमने चर्चा की थी उसको थोड़ा सा संक्षेप में करते हैं और फिर आज का भी विषय शुरू करेंगे जो आज का दूसरे अध्याय का होगा, ताकि थोड़ी सी हमारी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाए। सो यहाँ पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी, जैसे हमने स्वाभाविक है भगवद गीता को हम श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य हैं उनकी शिक्षाओं के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। सो भगवद गीता हमने चर्चा की मूलभूत ग्रंथ है, भगवान की वाणी है, 5 विषय हैं इसके, कैसे ये एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह है, और उसकी पृष्ठभूमि का वर्णन हुआ द्रौपदी का अपमान और फिर कैसे सब युद्ध के लिए तैयारी हुई, भगवद गीता के 700 श्लोक, कैसे भगवद गीता हमारे जीवन में कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ओर हमें ले जाती है, भगवान कृष्ण जीवन का विषय बताते हुए हमें कैसे जीना है बताते हैं। पहले अध्याय में 4 विभागों की चर्चा हुई, दुर्योधन की कूटनीति, विजय के चिन्ह, भक्तवत्सल श्री कृष्ण और अर्जुन की करुणा। धृतराष्ट्र के प्रश्न से हमने सीखना प्रारंभ किया कि संशय और आशा ये हमारे जीवन में हमेशा बने रहते हैं, हमें अच्छे निर्देशों को लेना चाहिए जो कि धृतराष्ट्र नहीं ले पाया, उसके तो हृदय के बादल में बस वो बिजली के समान अच्छे उपदेश आए और चले गए, तो हमें कम से कम उसको संभाल कर रखना चाहिए। सो फिर संजय उत्तर देते हैं प्रश्नों का, जो प्रश्न किया था एक प्रश्न, और फिर उसके उत्तर में पूरा अध्याय वो कहते हैं। तो कैसे दुर्योधन की कूटनीति का वर्णन करते हैं पहले, और फिर वर्णन करते हैं कि कैसे दुर्योधन केवल बाहरी चीजों को देख सका, आंतरिक विकास की ओर ध्यान नहीं दे पाया और इसीलिए प्रगति नहीं हुई। गुरु के पास जाने की सही विधि भी, अगर आंतरिक विकास हमें करना है तो गुरु के पास जाने की सही विधि का पता होना चाहिए, ये भी हमने कल चर्चा की दुर्योधन और युधिष्ठिर के उदाहरण से। फिर पांडवों की विजय के चिन्ह हुए, बुराई पर सदाचार की जीत, जैसे शंख की ध्वनि, अलग अलग शंख बजे। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः, हनुमान जी की उपस्थिति और फिर अग्नि द्वारा दिया गया रथ। और फिर हमने चर्चा की भक्त वत्सल श्री कृष्ण की, कैसे श्री कृष्ण भक्तों को प्रेम करते हैं। और अंतिम विभाग अर्जुन की करुणा की चर्चा हुई, जहां अर्जुन ने अपने संबंधियों के प्रति, वरिष्ठों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, मित्रों के प्रति करुणा को दर्शाया। और फिर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमारी जो डेस्टिनी होती है वो हमारे डिसीजंस पर बेस्ड है, क्योंकि वो हमारे डिसीजंस का रिजल्ट है। और डिसीजंस हम कैसे लेते हैं, चॉइसेस क्या हैं हमारे पास, हम चॉइसेस लेते हैं कि किस तरह से हमें जो फ्री विल मिला हुआ है, तो उस फ्री विल के आधार पर हम चॉइस लेने के लिए फ्री हैं। सो वॉर और पीस कैसे होना है, अर्जुन का आत्मसंयम और साधु स्वभाव, और कैसे अर्जुन चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा वातावरण बना रहे और उसको किस तरह से दूषण होता है इत्यादि। और इसको हम लोगों ने कल देखा, कैसे पारिवारिक जीवन का, पारिवारिक परंपराओं का नाश होता है। तो ये हमने पहले दिन के या पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा, और आज हम लोग अब दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। सो आज अब दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। कल पहले अध्याय से भी बहुत सारे चीजें हमने सीखी, और अब दूसरे अध्याय से, दूसरा अध्याय ये भगवद गीता का सार माना जाता है, कि जो भी हम भगवद गीता में सीखने वाले हैं वो पहले से ही कृष्ण ने दूसरे अध्याय में दे दिया है। तो वैसे तो इसको सांख्य योग कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो ये पूरे भगवद गीता का सार है। जो भी भगवान कहेंगे 17वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, अन्य अध्यायों में, वो थोड़ा थोड़ा एक दो श्लोक यहाँ कह चुके हैं भगवान। या कहना चाहिए कि दूसरा अध्याय बोलने के बाद भगवान रुक गए थे। क्यों? भगवान ने सोचा मैंने जो बोलना था बोल दिया, चले अर्जुन युद्ध करें, प्रारंभ करें। लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया, समझ में तो आया लेकिन अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया, और अर्जुन ने प्रश्न किया, और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे अध्याय बनते गए। तो इसलिए दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सी शिक्षाएं भी हमें इससे प्राप्त होंगी इस भगवद गीता यथारूप में। याद रखिए कि ये भगवद गीता हम लोग यथारूप, श्रील प्रभुपाद के द्वारा जिसका कमेंट्री किया गया है, टीका दी गई है, उसके आधार पर कर रहे हैं, ताकि हमें शुद्ध ज्ञान मिल सके। तो अब ये दूसरा अध्याय अगर देखा जाए तो वैसे उसमें 72 श्लोक हैं, लेकिन इन 72 श्लोकों को 5 भागों में बांट दीजिए, तो हम 5 भागों में बांटकर बड़ी आसानी से समझ सकते। कल हमने पहले अध्याय को 4 भागों में बांटा था, और 4 भागों में बांटकर हम समझ गए थे क्या हुआ था। देखिए, अगर पहला अध्याय याद रखना है, बड़ा सरल है, दुर्योधन की कूटनीति, पांडवों की विजय के चिन्ह, भगवान का भक्त वत्सल रूप, और अर्जुन की करुणा के आधार पर युद्ध ना करने के कारण, पहला अध्याय हो गया। ऐसे ही अब दूसरा अध्याय, अब इसको 5 भागों में हम बांट सकते हैं। क्या 5 भाग है? पहला भाग, पहले 10 श्लोक, जहां अर्जुन के और संशय आते हैं और फिर अर्जुन समर्पण करते हैं। फिर अगला भाग, जहां ज्ञान योग, भगवान ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आत्मा का विषय दे रहे हैं। तीसरा भाग, जहां भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, इस जगत में रहना, कैसे आनंद में रह सकते हो, क्या क्या करना चाहिए, कैसे भोग कर सकते हो, कर्म कांड। और फिर भगवान चौथे भाग में कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब भगवान बता रहे हैं कि कैसे अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर जीवन को जीना चाहिए। और जब अर्जुन ने ये सब सुन लिया तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, आपने बुद्धि योग की बात कही, तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं ये जो भी व्यक्ति इसका पालन करते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे? अब सड़क पर चलते हुए व्यक्ति का तो पता नहीं चलता ये क्या कर रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने उन व्यक्तियों के लक्षण दिए भगवान ने, जो जीवन की चरम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, जिन्होंने जीवन में सफलता क्या है उसको जान लिया, सफलता कैसे प्राप्त करनी है उसको भी जान लिया या उस मार्ग को स्वीकार कर लिया, और सफलता के लिए जो दृढ़ता चाहिए उसको भी उत्पन्न कर लिया, और अब उस दृढ़ता से उस पथ पर है, उनके लक्षण भगवान बताएंगे। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब सफल होना चाहते हैं, और सफल ही नहीं होना चाहते, हम ये भी जानते हैं कि कैसे उस सफलता के मार्ग पर चलें, दृढ़ता कैसे आए। आप सब जानते हैं कि हम लोग कई चीजें प्रारंभ करते हैं, हमें लगता है आज से बस ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद वो सब समाप्त हो जाता है, दृढ़ता ही नहीं रहती। तो ये कैसे उत्पन्न हो, भगवान ने बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया है। तो आज इस अध्याय पर हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि जितना हो सकता है समय के अनुसार आप सबको हम उसको बता सकें। तो भगवान के जो पहले विभाग में हम लोग इस दूसरे अध्याय के देखते हैं कि अर्जुन, अर्जुन ने, हमने पिछले अध्याय में क्या सुना, कहां पर समाप्त हुआ, अर्जुन को संशय हो रहा, युद्ध करना नहीं है, अरे कैसे युद्ध करेंगे, पारिवारिक परंपराएं नाश हो जाएंगी, पाप लगेगा, ये सारी चीजें। तो अब अर्जुन इस अध्याय के प्रारंभ में और थोड़े संशयों को रख रहा है, थोड़े से संशय उसके मन में और आ गए हैं। क्या संशय आ गए हैं अर्जुन के मन में, इसको हम लोग सुनेंगे। लेकिन इस संशय से और अर्जुन के समर्पण से एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम लोग सीखते हैं कि जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि इस जगत में कोई और आश्रय नहीं है, तब वो आध्यात्मिकता के या आध्यात्मिक व्यक्ति की या भगवान की शरण लेता है। तब तक पूर्ण शरण नहीं लेता, तब तक हमें थोड़ा बहुत विश्वास होता है। कहना चाहिए कि जब तक हमने किसी और चीज को पकड़ा हुआ है, स्वाभाविक हम पूर्ण रूप से दूसरी चीज को नहीं पकड़ते, या हम सोचते हैं कि ये चीजें हमें महत्व देंगी, ये चीजें हमें बचा लेंगी, ये चीजें हमारे लिए आश्रय हैं। तो किस किस चीज का आश्रय लेता है व्यक्ति? व्यक्ति आश्रय लेता है धन का, व्यक्ति आश्रय लेता है ऐश्वर्य का, व्यक्ति आश्रय लेता है किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। इस जगत में जब हिटलर जैसे लोग हुए, तो कई लोगों ने, हाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि हिटलर के समय में कलकत्ता में एक व्यक्ति हिटलर की पूजा किया करता था, क्योंकि हिटलर के कारण उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लोग ऐसे ऐसे लोगों की शरण लेते हैं, कोई कोई किसी शक्तिशाली व्यक्ति की ले लेता है, कोई किसी देवता की ले लेता है। जब तक ये साक्षात्कार नहीं हो जाता, विश्वास नहीं हो जाता कि अन्य कोई नहीं है। जिस समय युद्ध समाप्त हो गया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, परीक्षित गर्भ में थे उत्तरा के, और उस समय ये कौन सा समय था, ये वो समय था कि बस श्री कृष्ण अपने रथ पर चढ़कर जाने वाले हैं और सब खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, सारे बाकी अन्य पांडव खड़े हैं, कुंती महारानी खड़ी हैं, धृतराष्ट्र हैं, सब हैं वहां पर जो कृष्ण को अब सी ऑफ करने आए हैं। कृष्ण बस चढ़ने वाले हैं रथ पर, काफी समय रहकर अब वो जा रहे हैं, और ऐसे समय में अचानक उत्तरा भाग कर आ रही है, और उत्तरा ने अपनी रक्षा के लिए याचना करनी है, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मेरे मेरे गर्भ में जो पुत्र है, जो संतान है, उसको कोई मारने आ रहा है, उसकी रक्षा कीजिए। और ये करने के लिए उसने किसको चुना? वहां युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे, वहां सारे और योद्धा थे, उनके परिवारजन थे, बहुत सारे लोग थे, उसने किसी को नहीं चुना, केवल कृष्ण के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव। तो कहती कि हे महायोगी, हे देवताओं के देव, मेरी रक्षा कीजिए और आपके अलावा मैं किसी और को नहीं देख रही जो इस समय मुझे बचा सके। ये भाव चाहिए। और जब ये भाव अर्जुन में आया तो अर्जुन ने, इस विभाग में हमें देखेंगे कि अर्जुन ने समर्पण किया। तो अर्जुन के जो बहुत सारे संशय हो रहे हैं मन में, तो क्या क्या थे? अर्जुन दरअसल इस अध्याय के प्रारंभ में वर्णन किया गया, अर्जुन रोने लगा। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अर्जुन की जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई है और अर्जुन एक अज्ञानी की तरह करे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये करने लगा और अर्जुन करुणा दिखला रहा था। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी बात उसमें लिखते हैं कि ये जो भौतिक करुणा है अर्जुन जो दिखा रहा है, ये किस तरह है? तो कहते हैं कि ये इस तरह है कि मानो एक व्यक्ति डूब रहा है और आप उसको बचाने आए हैं, लेकिन आपने उसके कपड़ों को पकड़ा और कपड़े खींच लिए, उसका कोट पहना था उसने, वो कोट खींच लिया और आप बहुत आनंद में हो रहे, मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। तो प्रभुपाद कहते हैं अरे कोट बचा दिया, व्यक्ति मर गया। तो इसी तरह जब हम करुणा दिखलाते हैं और सच्ची करुणा को नहीं जानते हैं तो हम केवल एक दिखावा कर रहे हैं। जीवन में दिखावा बंद कर देना चाहिए, सत्यता की ओर बढ़ना चाहिए। एक प्रसंग याद आ रहा है, एक किसी ने हमें चुटकुला सुनाया था कि एक बार एक व्यक्ति पहुंचा और किसी के ऑफिस में, तो ये वो समय था जब बहुत सारे फोन हुआ करते थे, 8-10 फोन उसकी टेबल पर थे, तो आदमी दिखाना चाहता था कि मैं बहुत व्यस्त हूं। तो इसीलिए जैसे ही वो व्यक्ति आया उसने कहा एक मिनट रुक जाओ, खड़े रहो, एक फोन लिया, हाँ 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 मैं कर दूंगा कर दूंगा। तो वो व्यक्ति ने कहा सर एक मिनट रुको, दूसरा फोन लिया, मैं कर दूंगा कह रहा हूं, मैं बहुत अभी बिजी हूं, फोन मत करो। फिर उसने कहा सर, उसने कहा अरे रुको, तीसरा फोन उठाया। तो ऐसे काफी हो गया, तो बार बार वो फोन उठाता था, दो तीन फोन थे तो उठा रहा था बार बार। तो जब काफी समय हो गया वो खड़ा रहा व्यक्ति, तो उसके बाद 10-15 मिनट बाद उसने बोला हाँ भाई बताओ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बताओ क्या कहना। तो कहा सर मैं टेलीफोन विभाग से आया हूँ, आपके तीनों चारों फोन डेड हैं, उनको ठीक करने के लिए आया। तो ये व्यक्ति इतना दिखावा दिख कर रहा था कि मैं सारे फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल कुछ था नहीं। तो ऐसी करुणा का दिखावा कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सच्ची मदद कीजिए। और सच्ची मदद क्या है, सच्ची करुणा क्या है? सच्ची करुणा है जहां हम व्यक्ति को सही दृष्टि में उसके लक्ष्य की ओर ले जाएं, उसको यहां गुमराह ना करें, लेकिन हम उसको सत्य बताएं, सच बताएं और उसको उसके लक्ष्य की ओर ले जाएं। ये सच्ची करुणा है। और इसीलिए अज्ञान और आत्म साक्षात्कार, इसके लिए हमें समझना चाहिए कि गीता का उद्देश्य क्या है। गीता का उद्देश्य हमें अज्ञान से आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना, सच्ची करुणा को दर्शाना। और सच्ची करुणा क्या है? सच्ची करुणा है आत्मा के प्रति। आपने अपने परिवार के प्रति करुणा दिखा दी, आपने समाज के प्रति करुणा दिखा दी, आपने जानवरों के प्रति करुणा दिखा दी, आपने एनवायरमेंट के प्रति करुणा दिखा दी, लेकिन आपने आत्मा के प्रति करुणा नहीं दिखलाई। वो आत्मा जो इन सब चीजों के लिए करुणा दिखला रही है, उस आत्मा के प्रति करुणा नहीं दिखला रहे हैं आप। इसीलिए सच्ची करुणा है आत्मा के प्रति करुणा, और उसको नाश कर, उसको समझना, उस सच्ची करुणा को समझना और अज्ञान का नाश करना, ये भगवद गीता का उद्देश्य है। क्योंकि कभी कभी अच्छा लगता है करुणा सुनने में, अच्छा लगता है कि व्यक्ति ने अरे इतना बड़ा काम किया, वो बड़े दयालु हैं इत्यादि, लेकिन ऐसी करुणा अगर गलत तरीके से अज्ञान में रहकर करी जा रही है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं है ऐसी करुणा का। तो इसीलिए दोनों चीजें चाहिए, अज्ञान खत्म होना चाहिए और सच्ची करुणा जागृत होनी चाहिए। भगवत गीता आपके हृदय में तब स्थापित हो चुकी है, ये मान लेना चाहिए। तो इसीलिए ये अर्जुन यहां पर दिखला रहे थे, ये अज्ञान को दिखला रहे हैं। और फिर जब भगवान ने डांटा अर्जुन को, जब अर्जुन ने ऐसी चीजें कही, अर्जुन जब ये सोच रहे थे कि रो रहे हैं, तो उस समय अर्जुन को डांटा भगवान ने, कहा कुतस्तः कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन ये सब कहां से आ गया तुम्हारे हृदय में? अरे तुम तो आर्य हो। आर्य मतलब कोई ये नहीं कि कोई किसी परिवार से आ रहा है, आर्य मतलब वो जो जीवन के मूल्यों को समझता है। तो अर्जुन तुम जीवन के मूल्य को समझते हो, ये तुम्हारे हृदय में ये कलमच कहां से आ गया? क्लैब्यम अस्मदम पार्था नय तत्व उपप्रद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। वो कहते कि ये सब छोड़ो, ये हृदय की कमजोरी, और उठो युद्ध करो। तो अर्जुन अब भगवान को दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा हृदय कमजोर नहीं है, हृदय बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं सही काम करना चाहता हूं, गलत नहीं। तो उसने कहा कि मेरे जो वरिष्ठ हैं, मेरे जो बड़े हैं, उनको मैं कभी नहीं मारूंगा, उनको वो तो आदरणीय है। वैसे शास्त्रों में कई विभाग होते हैं, एक होते हैं अर्थशास्त्र, दूसरे होते हैं धर्मशास्त्र, तीसरे होते हैं ज्ञान शास्त्र, और चौथे होते हैं भक्ति शास्त्र। ये शास्त्रों में भी विभाजन है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आग लगाता है, आपको हथियार से मारने आता है, या फिर आपके भूमि को चुरा लेता है, धन को चुरा लेता है, भूमि को आप और ऐसे जितने भी कार्य मारने का जहर देने का प्रयास करता है, उसको मारा जा सकता है। तो अर्थशास्त्र के आधार पर, लेकिन अर्जुन अर्थशास्त्र को महत्व नहीं देता, धर्मशास्त्र को। अर्जुन ने कहा ठीक है, ये लोगों ने ये सब किया, लेकिन फिर भी ये वरिष्ठ हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। एक दृष्टि से अर्जुन मान लीजिए कृष्ण को पूछ रहे हैं, कृष्ण आप सांदीपनी मुनि को मारोगे? आप मार सकते हो सांदीपनी मुनि को, तो फिर आप मुझे क्यों कह रहे हो मेरे गुरु को मारने के लिए? इनको तो मारना तो दूर की बात है, अगर ये हमारे ऊपर आक्रमण भी करें तो कभी इनके ऊपर कुछ आक्रमण नहीं करना चाहिए, तो इतने पूजनीय है। तो अर्जुन भगवान को उपदेश दे रहा था, दिखा रहा था कि मेरा हृदय बहुत स्ट्रांग है, आप ऐसी चिंता मत कीजिए। तो अर्जुन ने फिर आगे क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि अरे आप ये जान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मैं इन्हें मारूंगा, बिल्कुल नहीं, इन्हें मारने से अच्छा तो मैं भिखारी बनने के लिए तैयार हूं। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि अर्जुन कितना महान आदमी है कि इतने बड़े राज्य को छोड़कर भिखारी बनने जाता है। ऐसा अर्जुन कहता है कि ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं महत्व नहीं देता इन सब चीजों को, मेरे लिए ये लोग बड़े पूजनीय हैं, और इनको मारकर इनके इनके शवों पर मैं जीवन जीना नहीं चाहता, इतने महान लोगों को। ये जब अर्जुन ने कहा, तो एक छोटा सा प्रसंग आप सोचने का प्रयास कीजिए कि अर्जुन क्या कह रहा था। गुरु नहत्वा हि महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपी हलोके, कि हे कृष्ण इस लोक में गुरुओं को मारने से अच्छा मैं भिखारी बन जाऊं। तो जैसे ही मान लीजिए कहा, थोड़ा सा हम भगवद्गीता को बदलते हैं मतलब थोड़ा सा बाहर आते हैं वापस, फिर आएंगे भगवद्गीता पर। तो मान लीजिए कृष्ण ने कहा तथास्तु, जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मैं भिखारी बनने के लिए तैयार हूं, भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ भगवान भिखारी बन जाओ, जाओ। तो अब अर्जुन भिखारी बन गए, और अब अर्जुन भिखारी बनकर क्या करेंगे? भीख मांगना है। सो अर्जुन को एक और भिखारी मिल गए, भिखारी भिखारी भाई भाई, तो एक भिखारी और मिल गए उनको, पतले दुबले भिखारी थे। तो फिर उनको लेकर अब वो भीख मांगने गए, बड़े अच्छा कुछ जमा कर लिया, शाम को आए, दोनों काउंट कर रहे हैं कितना जमा हुआ, इतने में भिखारियों का दादा आ गया। भिखारियों में भी सब कुछ होता है, भिखारियों में दादा भी होते हैं, भिखारियों में बहुत कुछ होता है। सो भिखारियों का दादा आ गया और उसने छीन लिया वो पतले व्यक्ति से, दुबले व्यक्ति से सब कुछ। अरे अर्जुन ने देखा, अर्जुन को गुस्सा आ गया, अर्जुन ने कहा वापस करो धन इसका। तो उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं अर्जुन हूं। तो उसने कहा तो वहां तो सब भिखारी हैं। तो उसने कहा कि देखो तुम्हें भी देना होगा पैसा। तो अर्जुन ने कहा बिल्कुल नहीं, इसका भी वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसने कहा अच्छा, तो वो मारने आया, तो अर्जुन भी मारने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन जैसे ही उससे लड़ने के लिए तैयार हुआ, कृष्ण प्रकट हो गए और अर्जुन ने देखा कृष्ण को कैसे, तो वो कह रहे कृष्ण आकर अर्जुन से कि देखो अर्जुन तुम्हें लड़ना ही है, ये भिखारियों से क्यों लड़ रहे हो, आओ वहां पर युद्ध भूमि में लड़ो, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था लड़ने के लिए। तो अर्जुन ये बातें कर रहे हैं, अर्थ क्या है इसका कि अपने कार्य को कोई त्याग नहीं सकता, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारे कार्य है, हम उसको करेंगे ही। अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय लड़ना, वो चाहे भिखारी भी बन जाए तो लड़ेगा, इसलिए अच्छा है एक योद्धा बनकर लड़े। तो अर्जुन ने इस तरह से प्रकट किया कि मैं तो भिखारी बनने तैयार हूं। तो अर्जुन ये क्या कह रहा था, ये कहने के बाद अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण मुझे अब कुछ नहीं पता क्या करना है, मैं युद्ध करूं या ना करूं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, क्या अच्छा है हमारे लिए क्या बुरा है मुझे नहीं पता, युद्ध में जीतना अच्छा है या युद्ध में हारना, और हमें यह भी नहीं पता अर्जुन कहता कि हम जीतेंगे या हारेंगे। खैर भगवान ने 11वें अध्याय में अपना विश्वरूप दिखाकर अर्जुन को बता दिया कि तुम जीतने वाले हो, चिंता नहीं करो। सो यहां अर्जुन कह रहा है हमें नहीं पता जीतेंगे कि हारेंगे, कैसे करना है, तो फिर ये निर्णय नहीं ले पा रहे। और ऐसी अवस्था में अर्जुन के जो गुण हैं वो प्रकट होते हैं कि अर्जुन क्या वर्णन कर रहा है कि मैं भिखारी बनने तैयार हूं, बहुत वैराग्य है उसके अंदर। दरअसल ये सारे गुण मुक्ति के लक्षण हैं या मुक्ति की योग्यताएं हैं। क्या योग्यता है मुक्ति की, प्रभुपाद उस तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जब तक इंद्रियां संयम में नहीं है ज्ञान नहीं हो सकता, व्यक्ति ज्ञान के स्तर तक नहीं उठ सकता, और जब तक ज्ञान नहीं है, ज्ञान और भक्ति नहीं है, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। इस बात को श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण लक्षण भगवद गीता हमें सिखा रही है, आत्मसंयम होना चाहिए, इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ नहीं देना चाहिए, और ज्ञान लेना है और भक्ति होनी है, तब हम मुक्ति के लिए तैयार हैं। ये योग्यताएं हैं। तो जब अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था तो अर्जुन ने फिर कृष्ण को समर्पण किया, अपने ही मित्र को समर्पण कर दिया। अभी तक जो बातें कर रहे थे दो मित्रों की बातें हो रही थी, लेकिन जब अर्जुन अपने कर्तव्य के प्रति कंफ्यूज हो गया, उसके मन में भ्रम आ गया, तो उसने कृष्ण, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण से अच्छा और कोई गुरु हो नहीं सकता, सो इसीलिए अपने हृदय की दुर्बलता को स्वीकार करते हुए अर्जुन ने कृष्ण को गुरु स्वीकार किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्ना, आपका शिष्य हूं आप बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है। तो अर्जुन बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, गुरु कैसे स्वीकार करना है ये समझते हुए कि गुरु जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है, हमें नहीं पता। कई बार लोग गुरु स्वीकार करते हैं ये सोचकर कि हम जो कह रहे हैं गुरु उस पर अपनी मोहर लगा दे कि हाँ भाई ये ठीक है, और हम जाकर लोगों को कहें देखो गुरु ने मुझे ये बताया। नहीं, भाव ये होना चाहिए जो अर्जुन का, अर्जुन ने कहा मुझे नहीं पता क्या होना है, आप जानते मेरे लिए अच्छा आप बताइए, यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो आप बताइए। तो अर्जुन का समर्पण हुआ, और ये समर्पण बहुत महत्वपूर्ण भगवद गीता के एक सिद्धांत को प्रकट करता है। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, दूसरे अध्याय में हमने कहा था बहुत कुछ हमें सीखने मिलेगा। सो जो अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे आत्मसंयम जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, भक्ति जरूरी है, और सही करुणा जरूरी है, अभी तक हमने इसको सीखा। लेकिन जब दुविधाएं आती हैं जीवन में तो फिर क्या करें, हमें मार्ग नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आता इसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन की जितनी भी दुविधाएं हैं जो अपने आप होती हैं, जैसे जंगल में आग लगती है कोई लगाता नहीं है, अपने आप तकलीफ आ जाती है जीवन में, तो उसके लिए हम कैसे कहां जाएं, किससे हम मार्ग लें, तो उसके लिए बहुत सरल है। जैसे अर्जुन ने गुरु स्वीकारे मित्र को, हमें भी ऐसे ही कोई अधिकार अधिकृत व्यक्ति को गुरु स्वीकारना चाहिए, किसी को भी नहीं। आप पान वाले के पास जाकर चर्चा करोगे कि बताओ भगवत गीता में क्या है, तो वो कहेगा कि भगवत गीता में ऊपर कत्था लगा हुआ है, नीचे चूना लगा है और जो भी बीच में है गुलकंद वगैरह डाला हुआ है, राइट? यही डालते हैं ना पान में, और क्या डालते हैं। तो पान वाले के पास जाकर हम भगवत गीता नहीं सीख सकते, इसीलिए ये हमारे लिए जीवन में एक बहुत बड़ी कमी या हमारी बड़ी गलती हुई है, विशेष करके भारत में और अन्य स्थानों पर भी, कि हमने किसी को भी गुरु मान लिया। हमने सोच लिया ये व्यक्ति हमें भगवत गीता सिखा देगा, ये व्यक्ति हमें भगवान से मिला देगा। आप लोग तो फिर भी बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन बाहर के देशों में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यापार है, कि हम आपको एक स्पेशल मंत्र देंगे, आप हमें इतने डॉलर दीजिए, स्पेशल मंत्र देंगे, आप एकदम बस भगवान बन जाएंगे। और वहां इतनी मूर्खता है, वहां इतना अज्ञान है कि लोग वो कर लेते हैं। वहां ही क्यों, भारत में भी है, भारत में भी लोग किसी को भी भगवान मानते हैं, और फिर वो भगवान उनके कुछ भी करें, फिल्मों के गानों पर डांस करें, फिल्म में काम करें या जो भी करें, वो हमारे भगवान है। तो ये चीज नहीं, हमें किसको गुरु मानना है ये हमें पता होना चाहिए। एक प्रामाणिक व्यक्ति जिसके हृदय में एक ही इच्छा हो कि आप कृष्ण के निकट आए, आपका जीवन सफल हो, ऐसे व्यक्ति को हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता या जीवन में सही मार्ग को प्राप्त कर भी उसका पालन नहीं कर पाता, तो उसको कृपण कहा गया। कृपण मतलब कंजूस। क्यों कंजूस? उसके पास है, क्या है उसके पास? उसके पास ऐसा धन है जो अगर उसका वो सदुपयोग करे, उसका सही उपयोग करे, तो वो जीवन में सफल हो सकता है, लेकिन वो उसको दबा कर रखता है, बंद कर रखता है। हर मनुष्य को ये उपहार है। क्या सुविधा है? आपके पास समय है मनुष्य जीवन में, आपके पास बुद्धि है मनुष्य जीवन में, आपके पास सुविधा है मनुष्य जीवन में, क्षमता है आपके अंदर भगवान को प्राप्त करने की, और आप उस क्षमता का, उस सुविधा का, उस समय का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? कागज के कुछ टुकड़े प्राप्त करने के लिए। इसे कहते हैं कृपा। तो इसीलिए प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि ये चमड़ी का रोग है। चमड़ी का रोग मतलब हमारे शरीर से संबंधित सारे लोगों से हम अपना अपना मान रहे हैं, लेकिन बाकी भगवान को क्यों नहीं मान रहे? क्या भगवान हमसे संबंधित नहीं है? केवल हमारे परिवार के जन हमसे संबंधित हैं, केवल हमारे समाज के व्यक्ति हमसे संबंधित हैं, भगवान हमसे संबंधित नहीं है? इसीलिए दूसरा होते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो बड़ा बुद्धिमान है। ब्राह्मण केवल एक परिवार में जन्म लेने से नहीं हो जाता। ब्राह्मण मतलब जो बड़ा बुद्धिमान है, और वो अपने मनुष्य जीवन को उन चीजों में लगाता है जिससे जीवन के सारी समस्याओं का हल मिले, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। अन्यथा तो ब्राह्मण बहुत सारे होते हैं, लेकिन सही दृष्टि में ब्राह्मण वो है जो, तो दो है शब्द, कृपण और ब्राह्मण। कृपण यानी कंजूस, कंजूस व्यक्ति जो उपयोग ही नहीं करना चाहता कुछ। जैसे एक बार एक बहुत अमीर आदमी था, बहुत पैसा था, लेकिन सूखी रोटी खाता था, घी भी नहीं लगाता था, बड़ा कंजूस था। तो लोगों ने कहा कि अरे इतना धन है तुम्हारे पास, थोड़ा कुछ घी तो लाओ कम से कम। तो बहुत जब लोगों ने कहा तो हृदय पर भारी पत्थर रखकर एक घी का टिन लेकर आया, लेकिन इतना कंजूस था खोलता नहीं था उसको, खोला नहीं, वो गरम गरम जो रोटी चपाती होती थी बाहर से ही ऐसे लगा देता था कि बस खत्म ना हो जाए कहीं। तो हम लोग भी एक कृपण बन चुके हैं, इतनी सुविधा मिली है हमें भगवान को प्राप्त करने की, लेकिन हम क्या करते हैं? जन्माष्टमी पर एक दिन जाते हैं मंदिर, ये उस तरह है कि बाहर से चपाती लगा रहे बस, घी की सुगंध भी नहीं आएगी। तो इसीलिए कृपण मत बनी, ब्राह्मण बनिए। ब्राह्मण मतलब जीवन के उद्देश्य को समझिए। भगवत गीता हमें ब्राह्मण बनाने के लिए, ब्राह्मण मतलब नाम का ब्राह्मण नहीं, वो व्यक्ति जो मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे, और उसके लिए भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास और पूर्ण आश्रय जरूरी है। पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहिए भगवान पर, जैसे अर्जुन हो गया। अर्जुन ने कहा आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। और भगवान पर कैसे श्रद्धा होती है, भगवान पर समर्पण कैसे करते हैं, आश्रय कैसे लेते हैं, गुरु के माध्यम से। क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से अपने जीवन के कष्टों को सुलझा नहीं सकते, दुविधाओं के पार नहीं आ सकते, इसीलिए हम आश्रय लेते हैं भगवान का। और कैसे लेते हैं, जैसे अर्जुन ने लिया, अर्जुन ने गुरु माना, शिष्यस्ते हम शादि माम त्वम प्रपन्न, हम शिष्य हैं, तो इसी तरह हमें लेना चाहिए। और जब अर्जुन ने स्वीकार किया कि मैं आपका शिष्य हूं, कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण सोच रहे हैं कि अरे अभी अभी तो मित्र थे और अब इसने मुझे गुरु स्वीकार कर लिया, तो कृष्ण मुस्कुराने लगे कि ठीक है। दूसरा, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे ये देखकर कि अब अर्जुन तैयार है सही ज्ञान को लेने के लिए, पहले नहीं था। अगर पहले अध्याय में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, अर्जुन ज्ञान दे रहा है, अरे ऐसे कैसे होगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अंत में हो गया कि नहीं आप जो कहेंगे वही होगा, भगवान मुस्कुराने लगे। दरअसल भगवान की जो मुस्कान है इस जगत में कैसे आती है, श्रीमद भागवत में कहा है कि हासु जन उन्माद को रिच माया। भगवान का जो हास्य है, स्माइल, वो दरअसल ये जो माया जगत है जो सबको पागल कर रही है, मतलब हम लोग इस जगत में बड़ा प्रयास कर रहे हैं, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, भगवान ऊपर से देखकर हंस रहे हैं। हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, हम कई बार उस उदाहरण को दोहरा चुके लेकिन हमें बहुत याद आता है। हम एक जगह बैठे हुए थे, प्राकृतिक जगह थी, थोड़ा पानी का झरना बह रहा था, वहां पर हम पत्थर के ऊपर बैठे थे पास में, तो हमने देखा कि नीचे पानी में एक कीड़ा था और वो इधर से उधर इधर से उधर बस इतना ही करता था, फिर थोड़ा समय रुक जाता था मानो थक गया हो, और फिर वही, हो सकता उसका कार्य हो पानी को साफ करना या जो भी है, लेकिन वो इधर से उधर, फिर थक गया, फिर इधर से उधर, फिर इधर से उधर। और हम देख रहे थे और हमारे मन में आया कि कीड़ा कितना समय बर्बाद कर रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, ऐसे ही करता रहेगा। और फिर अचानक हमारे मन में आया कि भगवान भी तो ऊपर से देखकर ऐसे ही हमारे लिए सोचते होंगे कि ये व्यक्ति कितना बर्बाद कर रहा है, 9 to 5, 9 to 5, 9 बजे ऑफिस जाना, 5 बजे वापस आना, इधर से उधर यही तो कर रहा है। लेकिन उद्देश्य कहाँ है? इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है, इसका अर्थ ये नहीं हमें पढ़ाई नहीं करनी है, इसका अर्थ ये है कि कार्य करते हुए, पढ़ाई करते हुए, अपने कार्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये भगवान ने कभी नहीं, अर्जुन कार्य को त्याग रहा था, भगवान ने कहा नहीं त्यागना, ये पूरी भगवत गीता इसीलिए है। तो हमें कार्य त्यागना नहीं है, लेकिन क्या करना है, हमें कार्य में भगवान को जोड़ना है, ये कला सीखनी है। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे कि अब मुझे गुरु बनना है अपने ही मित्र का। तो भगवान अलग अलग रोल ले लेते हैं भक्त की इच्छा के अनुसार, लेकिन हर रोल में वो प्रमुख है। अगर वो अर्जुन के सारथी भी बने हैं तो भी वो महान है, वो परम है, परम भगवान है। और अब अर्जुन के गुरु बन रहे हैं तो भी परम भगवान है। अगर वो बचपन में अपने पिता नंद महाराज की चप्पलों को, खड़ाओं को सर पर रखकर लेकर आते हैं तो भी वो भगवान है। और जब यशोदा उन्हें बांध देती है तो भी वो भगवान है। इसलिए उनकी स्थिति में कोई कमी नहीं आती। तो कृष्ण मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ किया। तो पहला विभाग यहां समाप्त हुआ जहां अर्जुन ने समर्पण कर दिया, और अब दूसरा विभाग जहां ज्ञान दिया अर्जुन को। और सबसे पहला ज्ञान क्या दिया, अर्जुन तुम हो कौन? भगवान ने और कोई चीजें नहीं कही, भगवान ने ये नहीं कहा कि हमें, चलो अर्जुन अभी तुम्हें हिमालय पर ले चलते हैं, हम तुम्हें ध्यान की विधि बताएंगे कि बैठ जाओ ध्यान करो, नहीं। तो अर्जुन को क्या बताया उन्होंने, अर्जुन को उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम हो कौन, कौन हो तुम? सबसे पहले तो ये जानो, तुम कह रहे हो मुझे समर्पण कर रहे हो, अरे तुम मतलब कौन? तो देखिए, हमें हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम ये कर लेंगे हम वो बना लेंगे, हम हैं कौन हमें यही नहीं पता। तो इसलिए भगवान ने प्रारंभ भी वहीं से किया। अर्जुन ने बड़ी बड़ी बातें कर ली तो मानो अर्जुन को कह रहे ठीक है अर्जुन सब कह दिया, बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब बताओ तुम हो कौन। सोचिए आप कितना कोई घबरा जाएंगे कि आप किसी के सामने अपना बड़ा ज्ञान प्रस्तुत कर दें, वो व्यक्ति बड़े आराम से सुनता रहे और उसके बाद जब वो उसके बोलने का समय आए वो आपको कहे कौन हो भाई तुम, आपको कह रहे मुझे नहीं जानते मैं इतना प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं। अर्जुन को तो वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन अर्जुन को कह रहे अर्जुन तुम नहीं जानते अपने आप को। ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए दुनिया मुझे जानती है या नहीं, हमें ये सोचना चाहिए हम अपने आप को जानते हैं या नहीं। इस महत्वपूर्ण बात को भगवद गीता से प्रारंभ कर रहे हैं भगवान ज्ञान को कि दूसरे की मत सोचो अर्जुन। हम तो ये जानते हैं, हम लोग सोचते अरे लोग मुझे बहुत जानते हैं, लोग समझते हैं ये कौन है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये कोई बहुत बड़ा लॉयर है, ये कोई बहुत बड़ा सीए है, ये कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है। लोग क्या सोचते हैं वो चिंता मत कीजिए, आप जानते हो या नहीं अपने आप को ये चिंता कीजिए। और इससे प्रारंभ किया, अर्जुन को डांटा भगवान ने, प्रारंभ करते ही अर्जुन को डांटा भगवान ने। अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन ये तुम पंडितों की तरह बात कर रहे हो लेकिन हो मूर्ख। देखिए प्रारंभ किया से किया, किसको कह रहे हैं अर्जुन को, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा, तो कह रहे मूर्ख आदमी। तो जब कोई सिखाया जाता है तो सबसे पहले जो भ्रांतियां हैं हमारे मन में, जो गलत बातें हैं, उनको खत्म करना जरूरी होता है और उसके लिए कभी कभी कठोर शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रवचनों में कई बार कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, आवश्यक होता है, नहीं तो हमारा जो भ्रांति है, हमारी जो गलत धारणा है वो टूटती नहीं है। तो अर्जुन को ऐसे ऐसे शब्दों से भगवान ने डांटा कि तुम क्या समझते हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हो, दरअसल तुम मूर्ख हो। तो ये गुरु का काम है। गुरु मतलब ये नहीं है कि गोद में बिठाकर बस प्रेम से आपको रसमलाई खिलाए। गुरु का कार्य है कि जब आवश्यकता हो तो गलत बातों को निकालने के लिए वो बहुत कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल करे। तो भगवान ने बताया और फिर भगवान इस पूरे विभाग में आत्मा का वर्णन करते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रण मुह्यति। भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम किसके लिए शोक कर रहे हो, अरे ये भीष्म ये द्रोणाचार्य तो वैसे भी मरने वाले हैं, तुम इनके लिए क्यों शोक कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है मरेंगे नहीं। तो फिर अर्जुन ने कहा अच्छा ठीक है मरने वाले हैं ठीक है, लेकिन हमें तो इनसे प्रेम है, ये चले जाएंगे तो हमें दुख होगा। तो भगवान कहते हैं अच्छा एक बात बताओ कि जब तुम्हारा बचपन का शरीर था, फिर थोड़ा बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, तुम्हारा बचपन का शरीर चला गया, तुम क्या रोए थे जब तुम 15 साल के हो गए, तब रोए थे कि हाय हाय मेरा 5 साल वाला शरीर कहां चला गया। अर्जुन का बिल्कुल नहीं रोए थे। अच्छा तो नहीं रोए थे तो अब इनके लिए क्यों रो रहे हो, क्योंकि ये भी छोड़कर नया शरीर लेंगे, अभी तो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं तो नया शरीर मिलेगा, खुश होना चाहिए तुम्हें। अर्जुन का बात तो आपकी सही है लेकिन फिर भी हम इनके संग में नहीं रह पाएंगे ना। चलिए मान लेते कि इनको अच्छा शरीर मिल जाएगा लेकिन हमें कैसे इनका संग मिलेगा, तो वो तो चले जाएंगे उसका दुख होगा। तो भगवान कहते मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, उसको तो तुम्हें सहन करना होगा अर्जुन। तो अर्जुन को ऐसे ज्ञान दिया आत्मा का और उन्होंने बताया कि ज्ञानी कौन है, तुम अपने आप को पंडित मान रहे हो तो ज्ञानी कौन है, जो जानता है कि शरीर क्या है, जो जानता है कि आत्मा क्या है, और न तो मृत के लिए और न जीवित के लिए वो कभी शोक नहीं करता, ना अनुशोचन्ति पंडिता, तो वो पंडित है अर्जुन। इसीलिए ज्ञान को समझो, ज्ञान क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है, ज्ञान की परिभाषा है 3 चीजों को बड़ी अच्छी तरह से जानना, और केवल जानना नहीं उनके संबंधों को समझना पहली चीज है ये भौतिक जगत, दूसरा चीज है आत्मा और तीसरा है भगवान। तो क्या इनको हम जानते हैं या इनके बीच के संबंध को हम समझते हैं? अगर वो है तो फिर मानना चाहिए कि हम ज्ञान में हैं, सच्चा ज्ञान वो है। तो आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप सब बहुत ज्ञान ले रहे हैं कॉलेजेस में, अन्य जगह पर, बहुत अच्छी बात है, वो तो लेना ही है, लेकिन साथ साथ ये भी ज्ञान लीजिए जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाएगा और हमारी आध्यात्मिक जो पहचान है उसे हमें देगा। इसलिए जो भगवद गीता है ये कौन समझ सकता है? वो व्यक्ति जो भगवान का भक्त है। जो नहीं है, जो भगवान से द्वेष करते हैं, वे इस भगवद गीता को नहीं समझ पाएंगे और अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूल जाएंगे या फिर कभी उसको पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवद गीता को हमें इस भाव में समझना चाहिए ताकि हम ज्ञान ले सकें इस शरीर के विषय में, आत्मा के विषय में, और हम धीर बन सकें। भगवान कहते हैं कि जो ये समझ जाता है धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति होता है वो कभी मोह में नहीं पड़ता, उसे धीर व्यक्ति कहा गया है। धीर व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत देर तक कुछ चीज को पकड़ कर खड़ा रहेगा बॉडी बनाकर। धीर व्यक्ति वो है जो कभी विचलित नहीं होता किसी भी प्रकार के, उसको कभी जीवन में अच्छी चीजें हो, कभी बुरी चीजें हो, कभी सफलता मिले, कभी विफलता मिले, कभी मान मिले, कभी सम्मान मिले, कभी अपमान मिले, वो कभी विचलित ही नहीं होता। क्यों? उसके लिए सब समान है। क्यों सब समान है? क्योंकि उसने ये जान लिया है कि मेरा संपर्क भगवान से है, और उस संपर्क को जानकर वो मोह से बाहर आ जाता है। जब तक हम लोग इस जगत में हैं और जब तक हम भगवद गीता के सही ज्ञान को नहीं समझते हैं, हम मोह में रहेंगे। और इसीलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। किस चीज का ज्ञान दे रहे हैं? कि अर्जुन क्या क्या मोह है तुम्हारे अंदर, तुम द्वंद्वों को सह नहीं कर पा रहे हो। द्वंद्व क्या है? हार जीत, सुख दुख, ठंडी गर्मी। तो कहते उसको सहन करना सीखो। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमः पायिनो नित्य स्थाम स्थितिक्षस्व भारत। सुख को भी सहन करो अर्जुन और दुख को भी सहन करो। और फिर जब पहला स्टेप हो गया, आपने सुख दुख को सहन कर लिया, हाँ पराजय और जीत को सहन कर लिया, तब आप अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से कर पाओगे अर्जुन। जो कर्तव्यों के प्रति अब आपके मन में भ्रम आ गया है, भगवान ज्ञान के द्वारा इस भ्रम को तोड़ रहे हैं अर्जुन के, कि अर्जुन तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। ठीक है, पहले सहन करना सीखो, फिर अपने कर्तव्यों को अच्छे से करो, लेकिन उस पर रुको नहीं। ये हमारे लिए यहां बहुत महत्वपूर्ण चीज भगवान बता रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमने, ठीक है हमने थोड़ा सा ज्ञान ले लिया, हम अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। किस कर्तव्य को? आप एक विद्यार्थी के रूप में अपने कर्तव्य को कर रहे हो, माता पिता के रूप में कर्तव्य को कर रहे हो, आप डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्य को कर रहे हो, राजनीतिज्ञ के रूप में कर्तव्य को कर रहे हो, आप किसी लॉयर के रूप में अपने कर्तव्य को कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मगर अगला स्टेप भूलिए नहीं, ऊंचे उद्देश्य को हमेशा ध्यान रखना। फोकस ऑन हायर गोल शुड नेवर बी गिवन अप। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो जब हम अपने अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं, देखिए भगवद गीता कितनी प्रैक्टिकल चीजों को समझा रही है, ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है। ऊंचे ऊंचे उद्देश्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए हमें। सो इस चीज को यहां पर अर्जुन, और कैसे हमें सहन करना है, कुछ उदाहरण है। जैसे अर्जुन को कहा गया मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, तो हमारे लिए क्या उदाहरण है कि हम सहन करें? एक उदाहरण, बहुत ठंड का महीना हो तब भी सुबह सुबह उठकर स्नान करना होता है। आप में से जो उत्तर भारत में रहते हैं वो जानते हैं, क्योंकि कई ऐसे स्थान है भारत में जो समझ नहीं पाते हैं। जैसे बंबई जैसा स्थान है, बंबई वालों को अगर आप कहें कि माघ के महीने में नहाना है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहां पर ठंड होती नहीं है। तो वो उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन जहां ठंड होती है, इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण था। एक समय माघ का ही महीना या ऐसे कुछ समय था, प्रभुपाद आए हुए थे और कुंभ मेले का समय था, तो प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ थे और ये शिष्य सब विदेशी आए हुए थे। सुबह सुबह उनको बड़ी ठंड लग रही थी, वो वहां तंबू गड़े हुए थे उसमें रहना, कोई बाहर नहीं निकल रहे थे, सब रजाई ओढ़कर सोए हुए थे। प्रभुपाद ने देखा, अरे सुबह समय हो गया उठने का, सब सो रहे हैं। सो प्रभुपाद खुद जो उस समय बहुत वृद्ध 70-75 साल के हैं, तो वो खुद बाहर चले गए और एक वहां पर पानी का हैंडपंप लगा हुआ था, उसके नीचे बैठकर नहा रहे हैं सुबह सुबह। और जब इन लोगों ने देखा इनको, कहा अरे ये क्या हो गया, ये वृद्ध व्यक्ति 75 साल के ये नहा रहे और हम 20-25 साल के यंग अंदर बैठे हुए, सब बाहर निकल आए। ये एग्जाम्पल है कि हम कैसे गर्मी और सर्दी सहन करें। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि स्त्रियां गर्मी में भी, मई जून में बड़ी गर्मी होती है, लेकिन वो कुकिंग करते हैं किचन में जाकर। और इसी तरह अर्जुन को बताया जा रहा है कि अर्जुन को भी ये सहन करना चाहिए। सो उसको युद्ध करना चाहिए अपना धर्म मानकर, चाहे वो अपने रिश्तेदारों से ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन ये भी उसको करना चाहिए। यहां अर्जुन को ये बताया जा रहा है कि अपने कर्तव्यों को मत छोड़ो। परिवार के जनों से आपको लड़ना पड़ रहा है, लेकिन लड़ो, क्योंकि आपका कर्तव्य है। अपने नियत कर्तव्यों को मत छोड़ो, आध्यात्मिक उद्देश्य को मत छोड़ो और उसको ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ो, तब जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो जीवन में सफलता उन लोगों को मिलती है जो सच को देखते हैं। जीवन में सफलता उन लोगों को मिलती है जो किसी आधार पर चीजों को देखते हैं, जो शास्त्र के आधार पर इस जगत को देखते हैं, जिसे शास्त्र चक्षु कहते हैं। शास्त्र के आधार पर देखिए जगत को, आप कैसे देख रहे हो, आपको कैसे पता ये अच्छा है कि बुरा है, ये तो आपने निर्णय ले लिया। नहीं, हमें शास्त्र के आधार पर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति शास्त्र के आधार पर इस जगत को देखते हैं, तो उनके क्या लक्षण होते हैं, यहां पर आप कुछ लक्षणों को देख सकते हैं। सबसे पहला, उनका दृष्टि बहुत स्पष्ट होती है, क्लियर विजन होता है, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, अरे हमें ये करना है या वो करना है, यहां जाना है वहां जाना है, क्लियर विजन होता है। दूसरा, शरीर के स्तर पर कोई लैमेंटेशन नहीं होता। हम लोग हर समय लैमेंटेशन में ही लगे रहते हैं, रोने में ही लगे रहते हैं, शोक करने में लगे रहते हैं, लेकिन जो लोग शास्त्र के आधार पर देखते हैं वो नहीं करते। इसीलिए आप अगर शास्त्र के आधार पर नहीं देख रहे हैं, इन चीजों को ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि यही चीजें हमें जीवन में सफलता दिलाएंगी। वो जानते हैं कि किसी भी प्रकार से आत्मा के लिए मृत्यु नहीं होती। वो शरीर के बदलाव को एक कपड़ों की तरह, जैसे कपड़े बदलते हैं, ज्ञान के आधार पर उसको जान लेते हैं और हमेशा कृष्ण के आदेशानुसार चलते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया को, इस जगत को बड़ी अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो अर्जुन को वो कह रहे हैं कि वैसे भी आत्मा मरती नहीं है अर्जुन, तुम मारो। लेकिन क्या इसके द्वारा एक बात ऐसी नहीं आती कि भगवान ये कह रहे हैं कि हिंसा करो, क्योंकि वैसे भी कोई मरने वाला नहीं है, आत्मा मरने वाली नहीं है, मार डालो व्यक्ति को, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो क्या हम हिंसा ऐसी कर सकते हैं? कल को हम किसी को मार दे, पुलिस वाले पकड़े, तो पुलिस वाले को कहे अरे तुम्हें पता नहीं, मैंने उसका उद्धार किया है, वो एक्चुअली आत्मा है, वो मरा नहीं है। पुलिस वाला कहेगा अरे चलो मैं जेल में बताता हूं तुम्हें आत्मा है या नहीं है। तो क्या हमें अधिकार है हिंसा करने का, या करना चाहिए कि नहीं? और भगवान यहां हिंसा को क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि वो भगवान हैं, उन्हें तो शांति बनाए रखना चाहिए था, उन्हें अर्जुन को कहना चाहिए था अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, चलो हम लोग दोनों हिमालय में जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे वहां जाकर और हरे कृष्णा करेंगे। ये अर्जुन को क्यों भगवान कह रहे युद्ध करने के लिए, ये तो अच्छा नहीं किया। नहीं, ये जो युद्ध होता है या ये जो हिंसा होती है, धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए कभी कभी आवश्यक होती है। और भगवान के आदेशानुसार अगर ये है तो ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। अर्जुन तीर चला रहा है, लोगों को मार रहा है, हजारों लोगों को उसने मारा, 18 दिन में लाखों लोगों को उसने मार दिया, लेकिन वो सब उसके लिए शुद्ध भक्ति थी क्योंकि उसने अपनी इच्छा से नहीं भगवान की इच्छा से किया। ये एक कला है कि हम काम भी कर लें और हम फल भी नहीं लगे, पाप नहीं लगे। बुद्धिमानी तो इसी में है। तो इस जगत में लोग थोड़ी बुद्धिमानी दिखाते, किसी को मर्डर कर देते हैं और बच जाते हैं, तो सोचते हैं बड़े बुद्धिमान है, वो बच नहीं सकते। सच्ची बुद्धिमानी इसमें है कि हम काम करें और हमें कर्म का फल ही ना लगे, ये बुद्धिमानी है। और इस बुद्धिमानी को यहाँ अर्जुन को करने के लिए कहा जा रहा है। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये सब जगह है, जल में है, हवा में है, भूमि पर है, अग्नि में है, सर्वगतः स्थानुर, हर जगह है। इसलिए ये मत सोचो कि यहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं है, सब जगह है। तुम बस इस ज्ञान को अपने हृदय में स्थापित कर लो, और हे अर्जुन ये ज्ञान ही तुम्हें फिर इस सब चीजों के परे, जो ज्ञान क्यों दे रहे हैं भगवान, इसलिए कि ज्ञान ही तुम्हें सही अवस्था तक पहुंचाएगा। तो कभी कभी ये जो आत्मा का ज्ञान है समझने में बड़ा कठिन लगता है, अरे कैसे समझें ये आत्मा होती है, आत्मा का ये आकार होता है, देखा नहीं है। सरल मार्ग बताते हैं आपको आत्मा के विषय में समझना है तो। पहला चीज आप ये स्वीकार कर लीजिए कि भगवद गीता जैसे कृष्ण ने कही हम वैसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम नहीं समझते, कृष्ण समझते हैं, स्वीकार कर लीजिए। और लेकिन इसको करने के लिए हमें वैसे तो बहुत कष्ट सहना होगा, हमें बहुत तपस्या करनी होगी, क्योंकि तभी जाकर हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान सकते हैं, तो ये भी निश्चित है। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि अगर हमें किसी एक शुद्ध भक्त की, भगवान के भक्त की कृपा प्राप्त हो जाए, हम भगवद्गीता या भगवद्गीता के ज्ञान को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कोई तपस्या नहीं चाहिए, केवल एक शुद्ध भक्त की कृपा, जिसको हम अच्छी तरह स्वीकार करें, भगवद गीता को स्वीकार करें और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ें। सबसे सरल मार्ग है भगवद गीता समझने का। ये पहला विभाग था जहां अर्जुन से भगवान ने कहा। अब दूसरा विभाग जहां ज्ञान की बात की, तीसरे विभाग पे आते हैं, हम पांच विभागों की बात करने वाले हैं। भगवान अचानक ये कहने लगते हैं कि अर्जुन तुमको आनंद लेने लेना चाहिए, तुम्हें स्वर्ग जाना चाहिए, भोग करना चाहिए। अरे युद्ध करो, जीतोगे तो यहां पर राज्य करना, अगर मर गए तो स्वर्ग में जाओगे, दोनों जगह भोग है। तो भगवान किसकी बात कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें कुछ यहां भी आनंद चाहिए तो भी उसके लिए अपना कर्तव्य करो, लड़ो। तो जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, और लेकिन किस तरह, सही धर्म में रहकर, तो हमें इस भौतिक जगत में भी आनंद मिलता है। हमने कल आपको बताया था कि भगवान ने जीवन को लेकर यह भी बताना शुरू किया कि कैसे इस जीवन में, इसी जीवन में रहते हुए आनंद कैसे लेना है, यहां भौतिक जगत में रहते हुए। तो तब भी करने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, हमारे कर्तव्यों को निभाते रहना और उन कर्तव्यों को सही धर्मानुसार करना। अगर ये दो चीजें हम करते हैं तो निश्चित इस जगत में भी हमें आनंद की प्राप्ति होने वाली है, ये हमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन हाँ, कर्तव्य त्यागने नहीं चाहिए। और इसीलिए एक क्षत्रिय के लिए, जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय हैं तो उनके कई कर्तव्य होते हैं, तो किसी भी कर्तव्य को त्यागना नहीं है। अर्जुन का कर्तव्य था कि वो अपने जितने भी नागरिक हैं उनकी रक्षा करे, और हिंसा अगर हो भी तो कानून बनाए रखने के लिए, नियम बनाए रखने के लिए हिंसा का पालन करे, जरूरी था। ऐसे द्वेषी लोगों को जीते, समाज पर या दुनिया पर वो राज्य करे धर्म के अनुसार, क्योंकि जो भी क्षत्रिय होते हैं वो कभी भी, उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो संन्यास ले लें, उनको अपने कर्तव्य को पूरा करना होता है। तो अर्जुन से कहा जा रहा है अर्जुन अपने कर्तव्यों को पूरा करो, भागो नहीं, क्योंकि अगर हम कर्तव्यों से भागते हैं तो हम अपनी चेतना को दूषित कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सही कर्तव्यों को सही भाव में, सही मार्ग निर्देशन में करते हैं तो हम अपनी चेतना को दिव्य स्तर पर स्थापित करते हैं। सो अर्जुन से कहा जा रहा है कि क्योंकि ये इच्छा भगवान की है इसीलिए लड़ना चाहिए, ये दिव्य चेतना है। तो आइए दो चेतनाओं का वर्णन करते हैं, एक वो जो दिव्य चेतना है, दूसरी जो भौतिक चेतना है। तो दिव्य चेतना क्या है, यहां पर आप जैसे देख रहे हैं कि दिव्य चेतना है कि सब कुछ भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाए। जब हम सारी कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं तो उसमें प्रसन्नता, दुख, हार, जीत, इसका कोई भी कंसिडरेशन नहीं रह जाता और हम दिव्य चेतना में स्थिर होते हैं। लेकिन दूसरी ओर भौतिक चेतना क्या है, इसको भी देख लीजिए। भौतिक चेतना है जब हम अपने इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं, सारे हमारे कार्य केवल हमारे आनंद देने के लिए हैं, और फिर चाहे वो सत्वगुण में हो, रजोगुण में हो या तमोगुण में हो, तो उससे क्या होता है, हमें अच्छे और बुरे फल को भोगना होता है, और ये भौतिक चेतना है। सो जहां भौतिक चेतना मतलब मैं केंद्र हूं, ये भौतिक चेतना है। कृष्ण केंद्र है, ये दिव्य चेतना है। बस एक ही अंतर है, हमें भगवद गीता के द्वारा मैं से कृष्ण तक पहुंचना है। वैसे बहुत छोटा सा अंतर है, हम यहां हैं, कृष्ण यहां हैं, मगर ये छोटा सा अंतर पार करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं क्योंकि हमें सही मार्ग नहीं मिलता। इसीलिए अपनी चेतना को भौतिक चेतना से दिव्य चेतना में ले जाना चाहिए, और उसके लिए आवश्यक है बुद्धि योग, जो अगला विभाग आता है, चौथा विभाग बुद्धि योग। भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अब मुझसे सुनो अर्जुन कि क्या होता है बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब जहां हम बिना किसी फल के दिव्य चेतना में कार्य करते हैं, उसको बुद्धि योग कहते हैं। क्योंकि जब कोई कार्य किया जाता है वो हमें बंधन लाती है, और उस बंधन के आधार पर हमारी चेतना बनती है, हमारे कार्यों के आधार पर हमारी चेतना बनती है। तो अगर हम दिव्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो चेतना दिव्य है, लेकिन अगर हम भौतिक स्तर पर हैं तो फिर चेतना भी भौतिक है। तो इसलिए हमें इसको समझना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि अपने मन को अगर तुम मुझ में स्थिर कर लो तो फिर वो दरअसल समाधि की अवस्था है। तो हमारे लिए समाधि में दो बहुत बड़ी बाधाएं हैं, एक है भोग की इच्छा और दूसरा है ऐश्वर्य। तो इससे परे जाना आवश्यक है, और इसीलिए भगवान निष्काम कर्म योग की बात करते हैं। मतलब काम करो, कर्तव्य करो, लेकिन फल से आसक्त मत रहो, निष्काम कर्म करना। और फिर जब उन्होंने ये बातें कही, बुद्धि योग की बातें कही, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि मैं जानना चाहता हूं कि वो व्यक्ति होता कैसा है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है, उसके क्या लक्षण है, मैं जानना चाहता हूं। सो कौन है जो चेतना में एकदम स्थिर रहता है, तो भगवान उसका वर्णन करते हैं। और जो जो दिव्य चेतना में स्थिर व्यक्ति है, उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, वो संतुष्ट रहता है, जहां है जिस अवस्था में है संतुष्ट रहता है। क्योंकि असंतुष्टि हमारे पतन का कारण बनती है। क्यों असंतुष्टि, हम कुछ चीज देख लेते हैं, भगवान एक मार्ग देते हैं दो श्लोकों में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संघात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। तो भगवान कहते क्या होता है, हम ध्यान करते हैं किसी भोग का, आनंद का, गलत चीज का। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग दिया गया है अब आप लोगों के लिए, अगर कभी ऐसा होता है कि आप गलत चीजों में फंस गए हैं, फंस रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो यह मार्ग है। भगवान कहते हैं कि कैसे होता है, हम चिंतन करते हैं ध्यायतो, उससे क्या होता है आसक्ति बढ़ जाती है, फिर आसक्ति से क्या होता है काम वासना जागृत होती है, काम वासना पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, क्रोध के कारण मोह में जाते हैं, मोह के कारण हमारी जो बुद्धि है, स्मृति है, वो सब चली जाती है, और उसके कारण फिर हमारा पतन हो जाता है। इसीलिए हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, मन पर, क्योंकि प्रारंभ सारा मन से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यान शुरू होता है। सो इसीलिए हमारे सफलता का सीक्रेट है कि कि हम अपने मन को अपनी इंद्रियों को वश में करें। ऐसा व्यक्ति जिसने इस कार्य को कर लिया उसके लिए कोई खतरा नहीं है, उसका कभी पतन नहीं होगा। क्यों? वो सारी चीजों को भगवान के लिए इस्तेमाल करता है और वो ऊंचे स्वाद को ले रहा है। लेकिन अगर हमने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया तो क्या होगा, ये इस तरह है कि मानो एक बहुत अच्छी बोट, एक शिप पानी में जा रहा है लेकिन बहुत तेज पानी उछाल देता है, कभी कभी बहुत तेज हवा आती है तो फिर वो शिप भी डूब जाता है। इसी तरह हमारा जो मन है इसमें अगर एक भी इंद्रिय की हवा तेज से आ गई, इंद्रिय मतलब हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी नाक है, हमारी जिह्वा है, हमारी त्वचा है, कोई भी इंद्रिय से एक ने भी तंग किया, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसीलिए हमें कंट्रोल करना चाहिए। जब शक्तिशाली शत्रु हो तो हमें भी शक्ति लगानी चाहिए। तो शक्तिशाली शत्रु को हम अकेले नहीं मार सकते, हमें किसी बड़े को बुलाना पड़ता है। इसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं बहुत शक्तिशाली हैं, अपने बल पर हम इन्हें वश में नहीं कर सकते, केवल कृष्ण को समर्पण करें, कृष्ण की सेवा में लगाएं, तब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और तब जाकर हम सच्ची शांति को प्राप्त करते हैं। तो जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है वो किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे एक समुद्र होता है, उसमें नदियां आती रहती हैं, समुद्र शांत रहता है। ऐसे बनिए, और तब बनेंगे आप ऐसे जब हृदय में आपसे इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो प्रश्न आता है, क्या कभी इच्छाएं समाप्त हो सकती हैं? इतनी इच्छाएं आती हैं हृदय में, रोज आती हैं, हजारों आती हैं, कैसे समाप्त होंगी? तो सही दृष्टि में इच्छा को समाप्त करने का अर्थ क्या है, हमें कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए कि आर्टिफिशियल तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। और जैसे अर्जुन केवल कृष्ण के लिए युद्ध, अर्जुन ने तो मना कर दिया था युद्ध नहीं करना, लेकिन जब कृष्ण ने कहा तो लड़े। तो इसीलिए हमें आर्टिफिशियली अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, समाप्त करने का प्रयास नहीं करना है, बस उन इच्छाओं को कृष्ण के लिए लगा दीजिए। आपको खाने की इच्छा है, उस इच्छा को लगाइए कि मैं कृष्ण को अर्पण करूं, और कृष्ण जब खा लें तब फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करूं। बस इतना सा बदलाव करना है जीवन में, जो चीज करें कृष्ण को अर्पण करके कर लें। तो इससे हम सच्ची दृष्टि में ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां हमें भगवान के धाम जाने का मार्ग खुल सकता है, और वो होता है केवल बुद्धि योग से। तो बुद्धि योग भक्ति के क्या क्या लाभ हैं, बस अब ये 5 मिनट में हम समाप्त करने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिए कि क्या लाभ होगा अगर आप भक्ति मार्ग को अपना लेते हैं, भगवान की सेवा में आ जाते हैं। सबसे पहला कर्म फल का नाश हो जाता है आप। दूसरा सबसे बड़ा जो खतरा है कि आप गलत काम कर नीचे के शरीर में जा सकते हैं, वो समाप्त हो जाता है। आपका डिटर्मिनेशन बढ़ जाता है, और साथ ही साथ आप इस जगत के ऐसे जो भी चीजें तंग करने वाली उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, समाधि को प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन के जो गुण दिए गए थे पहले हम लोगों ने 2 अध्याय के 6 श्लोक में, ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए अब हम उन्हें फिर से यहाँ दोहरा रहे हैं कि अर्जुन के क्या गुण दिए गए हैं 6 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने, जो उसको मुक्ति के लिए एकदम फिट बना देते हैं। पहला भगवान का भक्त होना, दूसरा ज्ञान लेना, तीसरा जैसे अर्जुन ने प्रकट किया, मैं भीख मांगना चाहता हूं, मतलब एक अनासक्ति, ये वैराग्य की भावना होना, चौथा भगवान के उपदेशों में पूर्ण श्रद्धा होना। और भगवान के उपदेश हमें भक्तों के द्वारा आते हैं, इसीलिए अंत में इस अध्याय के अंतिम विभाग में भगवान भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। सो भक्त कौन है, क्या लक्षण है भक्त के? भक्त के लक्षण बताते हैं कि वो बहुत आसक्ति द्वेष इत्यादि से परे होता है। उसको एक ही चिंता होती है कि भगवान को कैसे संतुष्ट करे, और भगवान की कृपा को उस पर प्राप्त कर लेता है। किसी भी प्रकार के कष्टों से दूर होता है, दुखों से दूर होता है। जान लीजिए इस जगत में 2 चीजें हैं, कष्ट और दुख। कष्ट को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दुखी होना ये हमारा चुनाव है, ये हम चुनाव करते हैं। तो जीवन में कष्ट आएंगे उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को दुखी होने से रोक सकते हैं। मिजरीज इन दिस वर्ल्ड आर इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। तो ये याद रखिए कि आपके जीवन में कष्ट आना ये तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन दुखी होना या ना होना ये आपके हाथ में है। तो ऐसे दुख से वो दूर रहता है और उसकी जो बुद्धि होती है वो बहुत अच्छी तरह भगवान में लगी होती है, मन शांत होता है और वो इस जीवन में भी भगवान की सेवा में लगे रहकर आनंद लेता है इस जीवन का भी, और उसके द्वारा उसको शांति प्राप्त होती है और अंततः भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो ये दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया और कहकर भगवान शांत हो गए। तो यहां पर दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि वो आप सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं ताकि आप सब उनके द्वारा दिए गए इस ज्ञान को समझ सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दूसरा अध्याय में प्रायः भगवान ने सब कुछ बता दिया, भक्ति का विषय बता दिया, लेकिन अर्जुन के मन में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया जो हम लोग अगले शनिवार को, आने वाले शनिवार को चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने क्या पूछा, अर्जुन के मन में प्रश्न आया, अरे प्रभु मुझे एक बात बताओ, एक तरफ आप बोल रहे हो कि युद्ध करो मारो सब करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भक्त बनो चेतना अच्छी रखो, तो आप मुझे एक चीज बता दो, मैं ये करूं या ये करूं, स्पष्ट बताइए। तो इसलिए तीसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हम सबके लिए है, क्या करना है जीवन में, ये करें या ये करें। तो इस चीज को हम तीसरे अध्याय में सुनेंगे। तो कल और आज हम लोग भगवद गीता का पहला और दूसरा अध्याय का सार सुन चुके हैं और तीसरे अध्याय को अब आगे आने वाले सेशन में हम लोग इसको सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप में से किसी के कोई प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। नम्रता आपको कुछ पूछना चाहते हो?
प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जैसे आपने बताया कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, तो एक विद्यार्थी के लिए निष्काम कर्म क्या हो सकता है? क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका लाइफ में एक टारगेट होता है, मतलब वो रिजल्ट देखता है अपने सामने तभी उस कर्म को करता है, मतलब तभी उसके लिए पढ़ाई करता है। तो इस तरीके से मतलब कैसे निष्काम कर्म करें? और दूसरा ये है प्रश्न कि क्या ईश्वर सच में हमारी प्रार्थना सुनते हैं? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? अपनी मतलब कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं?
थैंक यू, बहुत अच्छा है। सो पहला प्रश्न कि निष्काम कर्म योग विद्यार्थी के रूप में हम कैसे कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह इसको समझाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप प्रूव कीजिए कि कृष्ण सबसे बड़े डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो प्रूव कीजिए कि कृष्ण सबसे बड़े इंजीनियर हैं। सो निष्काम कर्म कैसे होगा, कि स्वाभाविक है कि हमें चाहिए कि हमें डिग्री मिल जाए, ये मिल जाए, थोड़ी बहुत भावना बनी रहेगी, लेकिन हम इसमें जोड़ दें, इसको जोड़ें कि ये डिग्री मिलने से या ये जो भी मुझे प्राप्त होगा इससे एक तरफ तो मुझे जॉब मिलेगी ठीक है, लेकिन मैं इसके द्वारा लोगों को ज्ञान भी बांट सकूंगा, क्योंकि जब मुझे ज्ञान लेने की आदत हो जाएगी, मुझे समझ में आएगा कैसे ज्ञान लेना है, वही भावना जब मैं भगवद गीता में लगाऊंगा तो फिर मुझे बड़ी जल्दी समझ में आएगा। दूसरा, कल को मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, प्रोफेशनल बनूं, तो उनको भी, उन लोगों को जाकर मैं सिखाऊंगा कि ये कैसे आप भक्ति कर सकते हो। तो इस समय के लिए निष्काम कर्म यही होगा कि हम अपनी पढ़ाई को भी भगवान को समर्पित करें और ये जाने कि इसके द्वारा मुझे जब भी जो भी स्थिति मिलेगी, पोजिशन मिलेगी आगे, उस पोजिशन का उपयोग मैं भगवान की बातों को आगे बढ़ाने के लिए करूंगा या करूंगी। तो ये चीज आप सोच सकते हैं। और दूसरा, क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं? निश्चित सुनते हैं। अगर ऐसा नहीं होता भगवान केवल पत्थर, भगवान केवल लकड़ी होते, जैसे लोग कहते हैं कि मानो तो पत्थर है नहीं मानो, मानो तो भगवान है नहीं मानो तो पत्थर है, ऐसा नहीं है। भगवान निश्चित सुनते हैं हमारी प्रार्थनाएं, और हमें इतने वर्षों में ऐसे बहुत से अनुभव हुए हैं, आज भी होते हैं, कि जहां हम ये देखते हैं कि जब हमने भगवान से किसी चीज के लिए प्रार्थना की, वैसे तो हम भगवान से कुछ मांगते ही नहीं हैं, लेकिन भगवान से अन्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, या फिर भगवान से कुछ ऐसी चीजों की प्रार्थना करते हैं जो उनकी सेवा में हमें मदद कर सकें, तो निश्चित भगवान उसको प्रदान करते हैं। सो इसीलिए दूसरों के अनुभव से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे टीचर अपना खुद का अनुभव है। सो आपके लिए नम्रता हमारा ये कहना है कि यस, हमारे अनुभव निश्चित आपको मदद करेंगे, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि आपके खुद के अनुभव आपको हो। भगवान से प्रार्थना कीजिए तीव्रता से, और निश्चित भगवान आपको ये अनुभव कराएंगे। ठीक है, ओके। हाँ वंदना, आपका क्या प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
प्रभु जी, हमको एक लोग बार बार मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, जो हम साइलेंट रह रहे के एक दिन हम उसको जवाब देते हैं उसका भूल का, तो ये कर्म भी भगवान हम हमसे कराते हैं उस लोगों के लिए, जैसे
जब
कृष्ण
तक,
अर्जुन को।
यस यस, बहुत अच्छा प्रश्न, थैंक यू। जब तक हम लोग पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित नहीं है, तब तक हमारे जो कर्म होते हैं, चाहे किसी को कुछ कह देना, शांत रहना, या जो भी चीजें हैं, ये हमारे जो भी कर्म होते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के फलों के अनुसार होते हैं, और दूसरा प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं। भगवान सीधे इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आप उनके पास गए ही नहीं है। हाँ, फिर जब हम पूर्ण रूप से भगवान के पास चले जाते हैं, तब फिर जो भी हमारे जीवन में होता है, इसका एक उदाहरण है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, आज वर्णन कर रहे थे, उत्तरा भागते हुए आई थी कृष्ण के पास, किसको बचाया उन्होंने? परीक्षित को। और इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने, जब वो राजा बन गए, गए जंगल में, प्यास लगी, किसी साधु को देखा, साधु ध्यान मग्न थे, मेडिटेशन में थे, उन्होंने कहा रे पानी चाहिए, नहीं पूछा मुझे, उन्होंने मरा हुआ सांप उठाकर डाल दिया। तो ये जो कार्य हुआ, इससे परीक्षित महाराज को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि ये भगवान की योजना से हुआ, भगवान चाहते थे कि भागवतम आए। हाँ, बाहरी दृष्टि से उनको श्राप मिला इत्यादि, लेकिन दरअसल उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसीलिए जब तक हमारे कार्य पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित नहीं है, तब तक हमें कर्मों के फल के अनुसार ही ये कार्य होते हैं। थैंक यू। समृद्धि, आपका क्या प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें कृष्ण को, भगवान कृष्ण को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम कैसे, भगवान खुद सेटिस्फाई है तो हम उन्हें कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न है, थैंक यू।
और मेरा
सॉरी, हाँ बोलिए, और एक प्रश्न आपका। सॉरी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। समृद्धि।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ जी,
हाँ प्रभु जी, युग जो है, युग चार चार प्रकार के हैं, तो चारों युग में भगवान विष्णु ने अपने अलग अलग अवतार लिए हैं। तो पहला सतयुग है, दूसरा त्रेता युग, चौथा तीसरा द्वापर युग, और चौथा कलयुग। तो त्रेता मतलब तीन होता है, तो इसको दूसरे नंबर पे क्यों आया है?
ओके, थैंक यू। सो चारों युग की बात कही आपने, और पहला प्रश्न क्या था आपका, किस विषय का था आपने इससे पहले? सॉरी,
सेटिस्फेक्शन, सेटिस मतलब कृष्णा खुद
कृष्ण
सेटिस्फाई
संतुष्ट।
है।
ओके, ठीक ठीक है, थैंक यू। सो पहला था आपका कि कृष्ण तो खुद ही संतुष्ट है, हम लोग क्या उनको सेवा से संतुष्ट कर सकते हैं, तो कैसे इसको जाने? ये बहुत अच्छा और ये एकदम सही बात है। कृष्ण आत्मा राम है, उनको हमारी किसी की जरूरत नहीं है कि हम जाएंगे तब वो संतुष्ट होंगे। जैसे मंदिरों में भगवान के विग्रह होते हैं तो उनको भोग लगाते हैं पुजारी समय पर, तो ऐसा नहीं है कि भगवान भूखे खड़े हुए हैं कि नहीं होगा तो फिर कैसे मिलेगा। तो फिर कैसे हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं? वो तो स्वयं संतुष्ट हैं। दरअसल हम जब उनकी सेवा करते हैं तो उनकी संतुष्टि के लिए नहीं करते हैं, इसके अपने लाभ के लिए करते हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए करते हैं। सो भगवान उसको प्रेरणा देते हैं कि भाई करो, इसके द्वारा तुम शुद्ध हो जाओगे। तो पहली चीज हमें जाननी चाहिए कि भगवान की सेवा ये उनके लिए नहीं है, वो तो आत्मा राम है, पूर्ण संतुष्ट हैं, ये हमारे लिए है। फिर भी वो भगवान को प्रसन्न करती है, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि इसके द्वारा ये जीव मुझ तक आ रहा है, इसलिए हम भगवान की सेवा करते हैं। और दूसरा, चार युगों की आपने बात कही कि चार युगों में पहला युग, दूसरा, तीसरा, तो क्यों त्रेता को दूसरा स्थान दिया गया और द्वापर को तीसरा? दरअसल सही जो क्रम है वो क्रम है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलि, 1 2 3 4, ये सही क्रम है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि नहीं, हमने तो सुना है कि सतयुग त्रेता वो केवल इस समय के लिए हुआ, जिस युग में, जिस चतुर्युग में स्वयं श्री कृष्ण आते हैं, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि जब वो आते हैं तो फिर क्रम बदल जाता है, केवल इसी चतुर्युग में। फिर से अगला जो शुरू होगा वो सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलि चलेगा, लेकिन इस युग में क्योंकि कृष्ण आते हैं और कृष्ण को एक महत्व देने के लिए इस युग को पलटा जाता है। तो जब आपने प्रश्न किया, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम लोग इसको जानते हैं और बहुत कम लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, क्योंकि सोचते ही नहीं है कि त्रेता मतलब 3, द्वापर द्वा मतलब 2। सो ये सही क्रम वही है, केवल इस समय के लिए बदला है। थैंक यू सुनील भाई। ओके, यहाँ और एक प्रश्न दिख रहा है, किनका है ये? एंजल वर्मा।
प्रणाम प्रभु जी, आप बताइए कि ब्रह्म मुहूर्त कब से शुरू होता है?
ओके, ब्रह्म मुहूर्त हम आपको तभी बताएंगे जब आप गारंटी दोगे कि आप उठने वाले हो ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सूर्य सूर्योदय के करीब 1.5 घंटे पहले। सो सूर्योदय जब भी होता हो, 6 बजे होता है तो 4:30 बजे, करीब 1.5 घंटा पहले सूर्योदय के ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ठीक है, और अभी हमने आपको बता दिया और कल से आपको उठना है, प्रयास कीजिएगा। ओके भावना, आपका क्या प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी,
अरे
मेरा प्रश्न यह है कि क्या शिव भक्ति और कृष्ण भक्ति में कोई अंतर होता है? प्रभु
थोड़ा सा तेज बोलेंगे, हमने ध्यान से सुना नहीं।
जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या शिव भक्ति और कृष्ण भक्ति में कोई अंतर होता है?
कौन सी? कृष्ण भक्ति और
शिव भक्ति
शिव
कोई
भक्ति?
अंतर है?
ओके, शिव भक्ति और कृष्ण भक्ति में कोई अंतर होता है? थैंक यू, गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा। तो शिव जी की भक्ति करना और भगवान कृष्ण की भक्ति करने में क्या अंतर? शास्त्रों में, या जैसे श्रीमद् भागवतम है, अन्य पुराण है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इसमें बड़े प्रसंग आते हैं, बहुत सारे, और इतने सारे हैं कि अभी सुनाने का समय नहीं है। आपको एक पद्म पुराण का प्रसंग सुनाते हैं। पद्म पुराण में पार्वती देवी शिव जी से पूछती हैं, वो शिव जी से कहती हैं कि आप सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो, तो आप ये बताइए कि परम सत्य कौन है। अच्छा, ये पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण कोई बना नहीं सकता, आप कहीं से भी पद्म पुराण ले लीजिए, आपको पढ़ सकते हैं इसको। तो पार्वती जी ने जब ये पूछा कि कौन आप, परम सत्य कौन है वो बताइए, तो फिर शिव जी ने कहा कि परम, वो एक और उन्होंने कन्वर्सेशन बताया व्यास देव और उनका, फिर उन्होंने कहा कि जो परम सत्य हैं वो भगवान श्री कृष्ण, जो श्रीमती राधा रानी के साथ जमुना के तट पर गोवर्धन के निकट खड़े हुए हैं, वो परम सत्य हैं। तो उन्होंने पूरा वर्णन किया और वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि उनकी भक्ति करना ये श्रेष्ठ माना गया। तो वो स्वयं कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक पद्म पुराण का है जो शिव जी ने कहा, वो कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीया नाम सम अर्चनम। कि बहुत सारी आराधनाएं हैं, उन सारी आराधनाओं में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की आराधना को परम माना गया है, और तस्मात् परतरं देवी, लेकिन उससे भी परे है देवी, शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को संबोधित करते हुए कि उससे भी परे एक आराधना है, और वो क्या है, तदीयानाम, मतलब भगवान से संबंधित या भगवान के भक्तों की आराधना। तो इस दृष्टि से हम देखें तो शिव जी की आराधना, स्वयं शिव जी कहते हैं कि मेरी आराधना और भगवान की आराधना अलग है, अंतर है, और शास्त्र में अन्य स्थानों पर भी है। लेकिन एक बात जान लीजिए, शिव जी हैं कौन? ब्रह्मा जी ने समझाया, क्षीरम यथा दधिकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि जैसे दूध दही में बदल जाता है, तो दूध और दही एक ही है, ऐसे ही कृष्ण का विस्तार होकर शिव जी में बदलते हैं, दूध दही में बदल जाते हैं, क्योंकि शिव जी जगत में आते हैं, भौतिक का गुणों को स्पर्श करते हैं, इसलिए उनको दही के समान ब्रह्मा जी ने माना। तो ये स्थिति शिव जी की उन्होंने दी है। तो शिव जी के अनुसार उनकी भक्ति और कृष्ण की भक्ति को उन्होंने श्रेष्ठ माना है, तो हम लोग शिव जी के आदेश को स्वीकार करते हुए उस भक्ति को ही कर रहे हैं। और ये उन्होंने केवल पद्म पुराण नहीं, भागवतम में भी शिव जी गए, उन्होंने प्रचेताओं को मिले, प्रचेताओं ने कहा क्या करना चाहिए हमें, उन्होंने कहा कृष्ण की भक्ति करो। तो जहां भी शिव जी को अवसर मिला, शिव जी ने भगवान राम या भगवान कृष्ण की भक्ति का महत्व दिया है। ठीक है, ओके। समय क्या हुआ, 8:30 होने आया है, और यह हम देख रहे हैं कि काफी और प्रश्न हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ओके। ट्राई करते हैं जितने 2-3 मिनट में आप लोगों के उत्तर दे सके। राहुल, क्या प्रश्न है आपका? राहुल अनम्यूट करना अपने आप को।
गुरुजी, गुरुजी नमस्ते। गुरुजी,
जी
गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि पहले आपने एक सेशन में बताया था कि चाणक्य कुछ नियम है कि 5 चीज पहले डिसाइड होता है, तो
जी
जैसे कि आपने बताया था 5 चीज डिसाइड होता है कि उसका कितना दिन जिंदा रहेगा, तो हम लोग क्या क्या मतलब हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तो इस तरह से मतलब इसमें बोला कि कर्म करें, अचानक कुछ और बता रहे हैं कि इस तरह से मैं कैसे समझूं।
बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हमने 5 चीजें बताई थी, आयुर्बलम च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचतानि हिसृजन्ति। बालक के जन्म लेने से पहले 5 चीजें जन्म लेती हैं, आयुर्बलम वित्तम विद्या निधन। तो आपका कहना है कि फिर हमें बीमारी से बचने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं, कि सब तो कर्म में लिखा है जो होने वाला है। यहाँ पर जब कर्म का नियम आता है तो एक चीज जान लीजिए राहुल, कि इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे तो होगा। जैसे मान लीजिए आपके कर्म में लिखा है कि आपको 80% मार्क मिलने वाले हैं, लेकिन आप एग्जाम ही ना दो, बोलो तो अपने आप मिलेंगे, 80% आएंगे, तो नहीं होगा। अगर आप प्रयास करोगे तो आपको 80% तक मिलेगा, ये कर्म का नियम है। तो इसीलिए हमें निश्चित अपने शरीर को अच्छे से रखना, अपना कर्तव्य बंद नहीं करना, और विश्वास रखना। इसका अर्थ क्या है, अपना कर्तव्य बंद ना करें, जैसे अर्जुन को कहा गया कर्तव्य बंद नहीं करें, लेकिन ये विश्वास रखें कि जो आना है वो आएगा, उसके लिए चिंता ना करें, चिंता कृष्ण के लिए करें। तो ये हमारा जीवन होना चाहिए, ठीक है। तो अपने निश्चित अपने स्वास्थ्य का इत्यादि हमें ध्यान रखना चाहिए। शिखा, क्या प्रश्न है आपका? अनम्यूट कीजिए अपने आप को शिखा।
हेलो, हरे कृष्णा गुरु जी।
हरे कृष्ण।
गुरु जी, अभी आपने संवाद से पहले अध्याय में बताया कि अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहता था, कृष्ण जी ने उन्हें समझाया। तो मतलब जैसे अगर हमारे सामने कोई अपना खड़ा है, अगर वो एक बार गलत करता है, दूसरी बार करता है, हम माफ करते चले जाते हैं और उसको वो चीज ये समझने लगता है कि हाँ ये मेरे से दब रहा है, तो हमें अपनों के खिलाफ सच में लड़ना भी चाहिए या नहीं?
तो जैसे अर्जुन ने लड़ा, हमें अपनों के खिलाफ लड़ना चाहिए या नहीं? तो स्थिति है, स्थिति के अनुसार निश्चित अगर बहुत आवश्यकता हो। लेकिन अर्जुन अपनों के खिलाफ कब लड़ा, उसके कारण देखिए। सबसे पहला, अपनों ने कोई और चारा नहीं छोड़ा अर्जुन के लिए। भगवान तो गए थे अंत में भी कि भाई इनको बस 5 गांव दे दो पांडवों को, बाकी सब आप रख लो। अर्जुन, दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो पहली चीज, कहाँ तक वो लोगों ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, इसलिए लड़ना पड़ा। दूसरी चीज, वो सब अधर्म के पालन में थे और और इसीलिए धर्म की स्थापना के लिए लड़ना पड़ा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो लड़े क्योंकि भगवान की इच्छा थी। सो हमें तब इस चीज को करना चाहिए जब ये स्थितियां हो, कोई और ऑप्शन ना हो और इच्छा ना हो, ऐसा नहीं कि लड़ना चाहते हैं लेकिन कोई और ऑप्शन ना हो हमारे लिए, और अगर भगवान की आदेश हो, भगवान की इच्छा हो, तब हम इसको कर सकते हैं। तो अब आपको कैसे पता है चलेगा कि भगवान की इच्छा है? वहां तो भगवान को अर्जुन खुद ही बोल रहे थे, सॉरी अर्जुन को भगवान खुद ही बोल रहे थे, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा जब आप किसी आध्यात्मिक गुरु के अधीन रहोगे और उनसे चर्चा करोगे, और अगर वे कहते हैं प्रामाणिक गुरु तो फिर हमें करना चाहिए, अगर वो मना करते हैं तो हमारे करने की इच्छा भी हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये दो हाथ ऊपर और अभी भी हैं, सनत और अमूल्य दो हैं। ओके, इन दो के बाद कृपया और कोई हाथ ऊपर मत कीजिएगा क्विकली। सनत, क्योंकि हम क्षमा चाहते हैं, हमारी दूसरी क्लास समय हो रहा है। हाँ जी
प्रभु जी, शास्त्र कलयुग के अंत में क्या मतलब, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट प्रभु जी, मतलब कलयुग के अंत में वो क्या
मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा? कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा शास्त्रों का ज्ञान धीरे धीरे लुप्त तो होता जाएगा। जैसे अभी भी हमारे पास सारे शास्त्र उपलब्ध नहीं है, जितने भी शास्त्र हैं, तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा धीरे 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 शास्त्र का ज्ञान समाप्त तो होता जाएगा। और फिर इसीलिए आवश्यकता पड़ेगी भगवान को कि कलयुग के अंत में कल की अवतार में आकर पुनः सतयुग प्रारंभ करने के लिए पुनः शास्त्रों को स्थापित करेंगे। तो ऐसा वर्णन खास करके श्रीमद् भागवत में दिया गया। ठीक है
प्रभु जी, मतलब फिर से वो शास्त्र लिखे जाएंगे क्या प्रभु जी?
हाँ, ये शास्त्र हमेशा से रहे हैं, सतयुग में भी रहे हैं, हर युग में रहते हैं, लेकिन हर युग में उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। लिखित केवल कलयुग में किए जाते हैं, क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि कम हो जाती है, स्मृति कम हो जाती है। पहले के समय में लोग केवल सुनते थे, याद रखते थे, उनको श्रुतिधर कहते थे। अभी हमारी इतनी ये नहीं है क्षमता कि हम सुने। अभी जैसे हमने करीब 1.5 घंटा बोला है, अगर आपको कहा जाए पूरा रिपीट करो तो आप कितना रिपीट कर पाओगे? अभी अभी सुना आपने, कम कर पाओगे ना? तो हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता कम हो गई है, इसलिए लिखित रूप में केवल कलयुग में आते हैं, बाकी समय में बने रहते हैं, लेकिन वो शब्द के आधार पर, एक एक गुरु से शिष्य, शिष्य से अंत में उसके शिष्य, ऐसे चलता रहता है केवल शब्द आधार। ठीक है, थैंक यू सनत, थैंक यू वेरी मच। ओके, आखिरी प्रश्न अमूल्य, इसके बाद समाप्त करेंगे। यस अमूल्य, क्विकली आप क्वेश्चन पूछ लीजिए।
पर हाँ, अर्जुन की ऐसे क्या विशेषता थी कि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ही भ्रांति आया, बाद में गीता ज्ञान पाने के बाद उनको स्पष्टता क्लियरेंस हुआ?
थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन को क्या ऐसा था कि उनको ही भ्रांति आई? भगवान भगवद गीता में ही बताते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, भगवद गीता का, भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम। भगवान चाहते थे कि भगवद गीता का रहस्य मेरे भक्त को ही पता चले, भक्त के द्वारा अन्यों को पता चले, इसीलिए जान बूझ कर अर्जुन को ऐसी स्थिति में डाला गया। अर्जुन ने प्रश्न किए और फिर भगवान ने भगवद गीता कही। दरअसल अर्जुन के लिए नहीं थी, हम सब के लिए थी, लेकिन अर्जुन को क्यों चुना गया, अर्जुन की क्या योग्यता थी? भक्तोसि मे सखा चेति, भगवान का भक्त था, भगवान का सखा था, और भगवान चाहते थे उसके द्वारा ही ये ज्ञान प्रकट हो। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप में से जो लोग मेडिटेशन में आते हैं सुबह 6:30 बजे, कल सुबह उनसे भेंट होगी आप सबसे। और अन्य जो लोग नहीं आ रहे हैं मेडिटेशन में शाम को सुबह 6:30 बजे, उनसे अगले शनिवार को भेंट होगी भगवद गीता की इसी क्लास में। लेकिन आप प्रयास कीजिए, आप लोग मेडिटेशन के क्लास में भी आ सकें। हम लोग वहाँ पर अभी प्रारंभ भी किया है, 8-10 दिन हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सभी को लाभ मिल रहा है, तो आप सब भी प्रयास कीजिए आने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये मेडिटेशन का टाइम थोड़ा डिटेल भेज दीजिए रेवती प्राण प्रभु, मेडिटेशन का लिंक और मेडिटेशन के क्लास का लिंक तुरंत शेयर कीजिए, बहुत लोग पूछ रहे हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा।